તારીખ 25/12/1997 શ્રીમદ રાજચંદ્ર પત્રાંક 128 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું કોઈમ્બતુરમાં પ્રવચન.
શ્રીમદ રાજચંદ્ર વચનામૃત. કોઈ પણ માણસને
ભાઈ જો તો કેમ આમાં અવાજ નહીં આવતો? કરવું પડે
એસે. इनकम टैक्स का भी प्रॉब्लम है और छोटे मोटे ऑफिस में स्टाफ का भी प्रॉब्लम होता है. कोई तनख्वाह ज़्यादा मांगता है, कोई एडवांस ज़्यादा लेना चाहता है, कोई काम बराबर नहीं करता है, कोई देरी से आता है. अब किसको पहले हाथ में लेंगे? ऐसे हमारे जीवन में प्रॉब्लम तो बहुत से हैं, पर सबसे बड़ा प्रॉब्लम किसका है? मृत्यु का है. कोई मरना नहीं चाहता, किसी को मरना नहीं है. और एक बार नहीं, अनंत बार मरने की बात है. तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कौन सा हुआ? कि अनंत मरण का, अनंत जन्म का. इसलिए ज्ञानियों ने सबसे पहले ये बड़े प्रॉब्लम को हाथ में लिया है. 128 का पत्र क्या सूचित करता है? कि छोटे मोटे बहुत से प्रॉब्लम हैं. लोग कहते हैं ना, हमारी जिम्मेवारी है, क्या करें. संसार में भी अनेक कार्यों की हमारी जिम्मेवारी है. हम गृहस्थी निभाए, हम व्यवसाय का करें, या हम ये धर्म की बात हाथ में लेवे, कौन सी लेवे? तुलनात्मक बुद्धि से विचार करना है कि हमारे घर के भी प्रॉब्लम है, व्यवसाय के भी प्रॉब्लम है, और हमारे जन्म मरण का भी प्रॉब्लम है. अब प्रायोरिटी किसको देना है? शायद समझाने की चीज नहीं है. तो ज्ञानी है ये, सबसे अधिक समझदार है, ये बात इससे सिद्ध होती है. सामान्य मनुष्य से, यानी सामान्य माने क्या, संसार के बुद्धिमान लोगों से भी ज्ञानी की विचार शक्ति, विवेक शक्ति अधिक है, वो इससे सिद्ध होता है. कि सबसे बड़ा प्रॉब्लम उन्होंने हाथ में लिया और इसका समाधान ढूंढा, खोजा और उसको पार भी किया. इसलिए ये जो प्रॉब्लम आता है कि हमारे घरेलू जीवन का क्या, हमारे व्यावसायिक जीवन कार्यों का क्या करेंगे, अगर इसमें हम लगेंगे तो वो कैसे होगा, ज्ञानियों ने तो बहुत बात सरल कर दी, सुगम कर दी कि देखिए ये सब तो तुम्हारे प्रारब्धाधीन है, तुम्हारी अक्कल होशियारी चतुराई इसमें काम करती है, ऐसा मानना धोखे में रहने के बराबर बात है। तुम्हारे प्रारब्ध के अनुसार ये होने वाला है, हुआ भी ऐसा ही अभी तक, अक्कल होशियारी तो उतनी की उतनी रही, कभी खोया है कभी पाया है, कभी खोया है कभी पाया है, तो उसको प्रारब्ध पर छोड़ करके जो पुरुषार्थाधीन कल्याण का जन्म मरण के नाश का उपाय है उसको क्यों नहीं करते। इसलिए टॉप प्रायोरिटी में इस विषय को रखा है। ये विचार शक्ति की कितनी विचार शक्ति विशेष रूप से काम करती है इनका ये सबूत है। इसलिए इस पत्र में ये विषय लिया है और अपने जो चलता विषय था उसमें कुछ सूत्र लिखे हैं, उसमें दूसरा सूत्र चल रहा था कि सत्संग बिना ध्यान है वो तरंग रूप हो जाता है। पहले तो ध्यान माने क्या, एकाग्रता होना उसी का नाम ध्यान है। एक विषय में एकाग्र होकर के इतना एकाग्र होते हैं कि दूसरा विषय का विकल्प ही नहीं चले, चिंता ही नहीं हुए, उसको कहते हैं ध्यान। उमा स्वामी महाराज ने तत्वार सूत्र में, सूत्र जी में इसका सूत्र इस तरह से लिखा है, एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम। अब ध्यान है वो चार प्रकार का है, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। प्रकारांतर से रूपस्थ ध्यान, रूपातीत ध्यान वो भी बोला जाता है, लेकिन वो चार में सब आ जाता है, वो अलग अलग दृष्टिकोण से उसकी विचार किया गया है। वो आर्त ध्यान तो सभी संसारी प्राणियों को होता ही है। आर्त ध्यान माने क्या, शरीर की चिंता, संयोग की चिंता, अनुकूलता प्रतिकूलता की चिंता, समस्त प्रकार के शुभाशुभ परिणाम में जो जहां भी एकाग्रता होती है सब आर्त ध्यान में जाती है। आर्त मैंने इच्छा, इच्छा का खिंचाव को आर्त कहते हैं, इच्छा से परिणाम का जो खिंचाव होता है उसको आर्त कहते हैं, वो सभी को होता है। कभी कभी किसी जीव को रौद्र ध्यान होता है, वो बहुत बुरा ध्यान है। रौद्र ध्यान में क्या होता है, हिंसानंदी, हिंसा करके आनंद मानना, वो हिंसानंदी है। चौर्यानंदी, चोरी करके आनंद मानना, वो चौर्यानंदी। ऐसे पाप के, तीव्र पाप के परिणाम में बहुत आनंद और खुशी का अनुभव होता है उसको कहते हैं रौद्र ध्यान। आर्त ध्यान से बहुभाग जीव तिर्यंच गति में जाता है और तिर्यंच गति की संख्या भी बहुत बड़ी है। तीनों गति में सबसे ज्यादा संख्या तिरिंज गति में होती है, सबसे कम संख्या मनुष्य गति की होती है। इससे ज्यादा नारकी है, इससे ज्यादा देव है, सबसे ज्यादा तिरिंज है। तीनों काल में ये परिस्थिति है। आर्त ध्यान तिरिंज गति का कारण है, रौद्र ध्यान है वो नरक गति का कारण है, धर्म ध्यान है मोक्ष का कारण है, वो पंचम गति है। संसार की चार गति छोड़ करके जो लोग मुक्ति में जाते हैं वो धर्म ध्यान से जाते हैं, और धर्म ध्यान विशेष निर्मल होता है, उसकी डिग्री बढ़ जाती है, तो उसी कोई शुक्ल ध्यान बोलने में आता है। जाति एक ही है उसकी। तीव्र रस, हाँ, वो आर्त ध्यान में जाता है। ध्यान तो हो ही, ध्यान बिना कोई चीज नहीं, ध्यान चालू जो है का अर्थ ध्यान चालू है, मोटा भागे अर्थ ध्यान चालू, बहु भाग ध्यान बिना का कोई चीज। अब प्रैक्टिकली इस विषय को विचार करें तो कि ध्यान कहाँ लगता है, कि जहां सुख बुद्धि होती है, सुख का निश्चय होता है, वहां ध्यान लग जाता है। चाहे सुख वहां हो नहीं हो अलग बात है, वो दूसरी बात है, लेकिन जब किसी ने निश्चय किया कि मेरा सुख यहां है तो उसका ध्यान वहां ही रहेगा। प्रैक्टिकली देख लीजिए ऐसा होता है कि नहीं। अब भगवान कहते हैं कि तेरा सुख तेरे आत्मा में है। इस ग्रंथ में 108 नंबर का पत्र है, उसमें कृपालु देव ने बार बार वो बात को लिखी कि हे जीव तुम मत भूलना, तेरे सुख तेरे आत्मा के अंदर में है, बाहर में कहीं तेरा सुख नहीं, और बाहर ढूंढने से मिलने वाला भी नहीं है। तो जिसको अपने में अपना सुख दिखता है उसको स्वरूप का ध्यान, आत्मा का ध्यान उसको होता है। आत्मा में सुख दिखे बिना आत्मा का ध्यान होने वाला है ही नहीं। चाहे कोई कितनी भी कितना भी प्रयोग करे मन वचन काया का, आत्मध्यान होने वाला नहीं है, क्योंकि सुख नहीं दिखा कहां से ध्यान होगा। और जब जहां सुख माना है, निश्चय किया है, वहां तो परिणाम गए बिना रहेगा नहीं। जैसे कि आप विपश्यना ध्यान शिविर करके आए हैं और आपकी सुख बुद्धि तो हटी नहीं, संसार के पदार्थों में से सुख बुद्धि तो हटी नहीं, अनुकूलता में से सुख बुद्धि तो हटी नहीं, एक अनुकूलता में पांचों इंद्रियों का विषय समाविष्ट है, वो वैसे की वैसी रहे और आपको ध्यान लग जाए, बात असंभव है, कभी होने वाला है ही नहीं। कुछ कृत्रिम प्रयास करके टेम्पररी कषाय मंद होती है, परिणाम की चंचलता कम होती है, इससे कोई परमानेंट सॉल्यूशन तो नहीं निकलता। तो यहां कृपालु देव कहते हैं कि सत्संग में ये बात समझ में आती है कि दुर्ध्यान क्या है, अपध्यान क्या है, और धर्म ध्यान क्या चीज है और कैसे होना चाहिए। जहां तक ये सत्संग से बात समझ में नहीं आए उसके पहले कोई वैसे ही आंख बंद करके पद्मासन में बैठ जाए और ध्यान लग जाए ऐसा होने वाला है ही नहीं। विपश्यनातों का दृष्टांत है। हमारे जैन संप्रदाय में भी कई लोग ध्यान कराते हैं, अलग अलग शिविरों में आश्रमों में ये ध्यान का पीरियड रखा जाता है सुबह शाम, जो भी ध्यान में बैठना है जिसको ध्यान करना है वो आ जाए। ये वैसे कोई ध्यान होने वाला है ही नहीं। ये समय और शक्ति का दुर्व्यय है, उतना नुकसान तो है ही। दूसरा नुकसान जो सबसे बड़ा है वो मिसकॉन्सेप्ट का है, अभिप्राय की भूल। जिस विधि से जो काम करना चाहिए इस विधि से काम नहीं करना, पर उस विषय में एक दूसरा निश्चय कर लेना, इसको छुड़ाना मुश्किल हो जाएगा। लोग ओक संज्ञा में फंसते हैं और बहुत ज्यादा काल ओक संज्ञा में रहने से ओक संज्ञा उतनी दृढ़ हो जाती है कि सही प्रयोग में आने में बहुत दिक्कत पड़ती है, बहुत कठिनाई हो जाती है। इसलिए ज्ञानियों ने एक बात की सूचना की है कि देखिए कोई साधन करने में देर सवेर होवे उसकी कोई आपत्ति नहीं, लेकिन जो कुछ करना वो सही करना, भले ही थोड़ा होवे या देर सवेर होवे, कम होवे और उसमें कुछ समय लगे, उसमें कोई उलझन में आने की बात नहीं है, लेकिन जितना भी करना थोड़ा भी करना सही करना, वरना परिश्रम और बढ़ जाएगा, परिश्रम और बढ़ जाएगा। समझ में नहीं है आत्मा मां? हाँ हाँ, बहुत अच्छा प्रश्न। जब सुख से जीव के परिणाम आकर्षित होते हैं और सुख आत्मा में है ऐसा ज्ञानियों ने बताया, तो लगे कैसे? क्योंकि वो लगने की चीज है, सुख दुख विचार की चीज नहीं है, अनुभव करने की चीज है, लगने की चीज। तो सुख लगे कैसे? बात तो ठीक है, क्योंकि बाहर में तो सुख लगता है इसलिए हमारे परिणाम जाते हैं, फालतू के तो नहीं जाते। फिर आप युक्ति से उसको सिद्ध करते हैं कि देखो वहां सुख नहीं था तो तुमको मिला भी नहीं, यानी तृप्ति हुई नहीं, लड्डू खाते खाते भी तुम थक गए, माना था कि मिठाई खाने में सुख है। बात तो ठीक है, लेकिन वो बात तो नास्तिक ही होगी कि वहां सुख नहीं है। चलो ठीक है माना, लेकिन आत्मा में सुख है ऐसे लगे बिना मानेंगे भी कैसे? कहने से कोई मानने वाला नहीं है, पक्का बनिया है आत्मा। पक्का बनिया मतलब क्या है? कि जो व्यापारी है इसके पास कोई ग्राहक आता है, बोलता है कि बहुत बड़ी खरीद करना है और माल आपसे लेंगे दूसरे से नहीं लेंगे, और थोड़ा नहीं लेना है, बहुत हमारी जो परचेज है बहुत बड़ी है, तब बेचने वाले को लगता है कि पैसा लेके आया होगा या उधार लेने की बात होगी, क्या बात होगी। और बड़ी खरीदी होती है और उधार होती है तो देना नहीं देना बात हिचकिचाट की होती है। फिर वो दिखा दे कि देखो मैं तो हार्ड कैश लाया हूं, करेंसी लेके आया हूं, चेक से भी नहीं लेना है, फिर कोई शंका का स्थान नहीं है, कॉम्पिटिटिव रेट में माल बेचेगा। पैसा देख लिया, क्या देख लिया, पैसा देख लिया। तो जैसे व्यापारी लोग जैसे पक्के होते हैं वैसे आत्मा भी ऐसा ही है। व्यापार के कई प्रिंसिपल इसमें लागू होते हैं कि उसको सुख दिखेगा तो सुख के पीछे दौड़ेगा, और नहीं दिखेगा तो तीर्थंकर कहेगा तो भी मानेगा नहीं। तीर्थंकर भगवान की दिव्य ध्वनि में बहुत बार सुना कि सुख तेरे आत्मा में है, लेकिन बात गले नहीं उतरी। सुख दिखेगा तब मानेगा, वो देखने का एक तरीका है। प्रश्न तो बढ़िया है, किस तरीके से हम हमारे आत्मा में सुख को देखें। बहुत प्रयोजनभूत बात है, सुख का मतलब है ना, मतलब की बात है, प्रयोजन की बात है। कब देखिए आपके परिणाम में, कषाय के परिणाम होते हैं शुभाशुभ, दोनों कषाय के हैं, उसमें आकुलता और दुख है। और आपके परिणाम में ज्ञान परिणमन करता है जिसमें कषाय का अभाव है। परिणाम में दो प्रकार है, एक सकषाय परिणाम शुभाशुभ, एक अकषाय परिणाम मात्र ज्ञान का। कषाय से भिन्न, शुभाशुभ परिणाम से भिन्न, अकेला ज्ञान को देखने में आए तो ज्ञान सुख रूप दिखेगा। जैसे सभी व्यक्ति का किसी न किसी रूप होता है और इससे वो पहचाना जाता है, किसे पहचाना जाता है, इसके सकल के रूप से पहचाना जाता है, ठीक है, सबकी शक्ल अलग अलग है इसलिए सब अलग अलग स्थिति से पहचाना जाता है। ऐसे ज्ञान का रूप है वो सुख है, क्या है, जैसे रूप में कुरूपता, सुरूपता, सुंदरता। सुरूपता मैंने सुंदरता होती है कि नहीं होती है, तो अपना आत्मा है, ज्ञान स्वरूपी है, बहुत सुंदर है, ऐसा है, बहुत सुंदर है। क्यों, कि ज्ञान का रूप ही सुख है। हमने कभी ज्ञान को इसका रूप कैसा है उस दृष्टि से, उस उद्देश्य से देखने का प्रयास नहीं किया। अब हमारे ज्ञान में एक उद्देश्य को धारण करके, हमारा ज्ञान स्वयं अपना रूप को देखने के लिए प्रवृत्ति करे तो ज्ञान अकषाय माने सुख रूप मालूम पड़ेगा। ये प्रयोग का विषय है, प्रयोग करना होगा। और वो प्रयोग कब होगा, ये भाववासन का स्टेज है वीरेंद्र भाई, ये भाववासन का स्टेज है। तो इसके पहले के सब स्टेज पार करके भाव भाषण के स्टेज में ये प्रयोग होता है तो ज्ञान सुखरूप दिखता है, सुखरूप दिखता है उतना ही नहीं, पर्याय में तो उसका सैंपल है, एक सैंपल पर से अनंत सुख की खाने का पता लग जाता है, एड्रेस मिल जाता है। जैसे एक ये होता है ना जो जमीन के तजग्न होते हैं, क्या कहते हैं उसको, जमीन के तजग्न होते हैं, कोई भी मिट्टी पत्थर है, जियोलॉजिस्ट कहते हैं, तो उसके हाथ में स्वर्ण पत्थर आता है तो उसका एनालिसिस करता है कि इसमें सोने के पार्टिकल्स कितने हैं, मिट्टी के पार्टिकल्स कितने हैं, उस पर से उसको सोने की खान दिखती है कि अगर इस जगह ये पत्थर निकलता है तो वहां इतना टन सोना निकलेगा। कितना सोना तो मिट्टी के साथ मिला हुआ है, अलग अलग परमाणु है इसका वहां, लेकिन उसको हजारों टन सोना दिखता है वहां। कितना दिखता है, हजारों टन सोना दिखता है। सैंपल पर से क्या दिखा, पूरी खान, पूरी खानी दिखी कि नहीं दिखी। वैसे मात्र ज्ञान है, अकेला ज्ञान को जो देखने के लिए काबिल होता है उस स्टेज में आकर के, उनको अनंत सुख की खान दिखने में आती है और लगना लगता है। क्या है वो ज्ञान है, उसको फील करते हैं ज्ञान वेदन से, किससे, ज्ञान वेदन से। ज्ञान में मुख्य दो धर्म है, एक जानने का और एक अनुभव करने का, वेदन करने का। ज्ञान स्वयं को अनुभव करता है, स्वयं को वेदन करता है, तो उसमें सुख का, निराकुलता का वेदन लगे बिना नहीं होता। 751 पत्र में कृपालु देव ने इसकी परिभाषा लिखी है इस प्रकार से, भावभाषण की, परमार्थ का स्पष्ट अनुभवांश है प्रतीति, अनुभवांश मैंने लगना, सैंपल चख लिया, भावभाषण में क्या हुआ, सैंपल चख लिया, सुख लगा। 471 और 72 पत्र में कृपालु देव ने उसको सुधारस बोला है, बीज ज्ञान बोल करके सुधारस बोला है, वह केवल को बीज ज्ञानी कहे, निज को अनुभव बतलाई दिए। वो भाव भाषण में उस सुख शांति का सैंपल अनुभव में आता है, वहां से अनंत सुख की खानी का पता लग जाता है और परिणाम उसी पदार्थ में अपने स्वरूप में दौड़ लगाने लगते हैं। क्या होते हैं, दौड़ लगाने लगते हैं, फिर धीरे धीरे नहीं चलते। इसलिए जिसको भाववासन होता है उसको स्वानुभव बहुत अल्प काल में आता है, देर नहीं लगती। सुभाग भाई को कृपालु देव ने इस भाववासन के विषय में ध्यान खींचा, लेकिन सुभाग भाई कृपालु देव के प्रति प्रेम समाधि में आ गए थे, वहां से वो समाधि छूटती नहीं थी। क्या हुआ, समाधि छूटती नहीं थी, और खुद है वो वचनबद्ध थे, उन्होंने प्रॉमिस दिया था, वचन दिया था कि इस भव में आपको आत्मज्ञान की प्राप्ति हम कराएंगे। अगर हमारे निमित्त से, हमारे हाथ से अगर ऐसा काम हुआ तो ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा सौभाग्य की बात बनेगी, ऐसा करके लिखा है। अब सुभाग भाई आगे बढ़ते नहीं थे, निकल नहीं रहे थे, वो विषय छेड़ते थे लेकिन उसका ध्यान नहीं जाता था। फिर जो आखिरी के दिन आए आयुष्य के, तब कुछ ट्रीटमेंट दिया और फिर ले गए इडर। इडर जाकर के वहां उन्होंने बीज ज्ञान, मैंने ये भाव वसन वाला प्रयोग दिखाया। क्या दिखाया? प्रयोग दिखाया, देखो ऐसे ध्यान हमारा लगता है, ये हमारे ध्यान की प्रक्रिया है, ऐसे परिणाम अंतर्मुख होते हैं, तुम देखो, गौर से देखो, अधिक गौर से देखो, आपको भी दिखने में। तो ये बात एक जीवंत उदाहरण रूप है, दिखता है, देखने के लिए हमारी योग्यता होनी चाहिए और वो योग्यता भाव भाषण के स्टेज में आती है। इसके पहले अवलोकन का स्टेज चलता है, लगातार अवलोकन होने के लिए पूर्णता का लक्ष्य होना आवश्यक है, इसके बिना हो ही नहीं सकता। पूर्णता का लक्ष्य शुद्ध अंतकरण के बिना होता नहीं कभी, और परिभ्रमण की वेदना चिंतना के बिना अंतकरण की शुद्धि कभी होती नहीं। इसलिए इस क्रम से जो आगे बढ़ते हैं उनको अपना सुख अपने स्वरूप में दिखाई देता है, अनुभवान से मैंने लगता है, फीलिंग स्टेज में वो अनुभव होता है और भाव वासन आ जाता है, तो परिणाम दौड़ने लगेगा, दौड़ लगाएगा परिणाम। ये बात बिना सत्संग और बिना परम सत्संग संभव नहीं है, इसलिए इसके पहले कोई ध्यान करता है, एक हवाई किला है। क्या है? हवाई किला। वो हवा में चलते हैं, कुछ होने वाला नहीं है, उसको तरंग बोला। कोई तरंगी लोग होते हैं ना, नए नए तरंग उठाते हैं, वास्तविकता का उसमें अभाव है, बिल्कुल वास्तविकता उसमें नहीं है। संत के बिना अंत की बात में अंत नहीं पामते। अंत मैंने भव भ्रमण का अंत। इसका जो विषय है वो संत के बिना इसका कोई अंत, मैंने बॉटम, इसके मूल बात समझ में नहीं आती। इसका मतलब ये हुआ कि जो जिसने ऐसा अनुभव किया है, भाव भ्रमण के अंत का विषय में जो अनुभवी है वही इस बात को बताएगा, वही बता सकेगा, दूसरे को वो बात का पता है ही नहीं, कहां से बताएगा। इसलिए ज्ञानी के बिना ये भाव भ्रमण का अंत आने की बात समझ में नहीं आती और प्रयोग में भी नहीं आती। लोक संज्ञा से लोकाग्रे नहीं जा सकते। लोकाग्र मैंने सिद्धालय, लोक में अग्र सबसे ऊपर कौन है? सिद्धशिला। जहाँ सभी सिद्ध विराजमान है, अनंत सिद्ध विराजमान है, वो लोकाग्र की वो अपना जो भूगोल है, जोग्राफी है, उसमें वहाँ सिद्ध शिला है। अगर हमको निर्वाण पद की प्राप्ति करनी है, सिद्ध पद की प्राप्ति करनी है, तो लोक संगना का त्याग करना होगा। लोक संगना माने क्या? लोगों की दृष्टि से हमें चलना, हमें कार्य करना, लोगों को क्या लगेगा, ऐसा करेंगे तो लोगों को क्या लगेगा, ऐसा करेगा तो लोगों समाज को क्या लगेगा, ये समाज के दृष्टिकोण से जो जीवन जीते हैं वो कभी अपना आत्मकल्याण कर सकते हैं नहीं है। क्योंकि आत्मकल्याण करना ये समाज का विषय नहीं है, एक स्पेशल लाइन है। जैसे किसी को हार्ट अटैक आता है तो समाज वाले को पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, वो कार्डियोलॉजिस्ट के पास चला जाएगा और वो भी अच्छे से अच्छा होगा उसके पास जाएगा, उसमें समाज की मीटिंग नहीं बुलाना पड़ेगा, फिर देखिए क्या करेंगे, अभी हमको इधर दर्द होता है कभी कभी, आप बताइए आप लोगों की दृष्टि से हमको क्या करना चाहिए, मर जाएगा। क्योंकि ये तो एक स्पेशल लाइन है इसके एक्सपर्ट लोगों की। वैसे आत्मकल्याण करना वो भी इसके जो एक्सपर्ट होते हैं उसकी लाइन है, वो समाज की लाइन थोड़ी ना होती। और हम कहते हैं कि देखो हमको धर्म करना है, तो समाज वालों की नज़र में हमारी जो इज्जत है वो वैसे की वैसे बना रहनी चाहिए। इसका आत्मकल्याण कभी होता नहीं है। अब छोड़ो समाज को, कहाँ तक ये लोक संगना काम करती है, कि जिस ग्रुप में अपनी जान पहचान है वो जान पहचान वालों की नजर में हमको हमारा स्थान जो है वही बना रखना है, वही टिकाई रखना है, वो भी लोक संगना है। चाहे वो 5-25 जने हो या कोई कितने भी ज्यादा अधिक से अधिक संख्या वाले हो, हजारों के तादाद में, ये लोक संगना है। दूसरे लोगों की नजर में हमको हमारा दिखाव क्या होगा, ये लोक संगना है। दृष्टांत लेना है तो बहुत अच्छा दृष्टांत है कि जैसे हम बोल रहे हैं, आप लोग सुन रहे हैं, तो आपके सुनने में अच्छी से अच्छी इंप्रेशन मेरी बन जाए, ये मेरी लोक संगना होगी। मैं इतना अच्छा बोलूं, इतनी अच्छी बातें बताऊं, इतनी स्टाइल से बताऊं, ऑरेटरी होती है ना, वक्तृत्व कला, बात करने की भी कला होती है, सबको अच्छा लगे और सबकी नजर में दिखाव अच्छा हो जाए, ये होगी लोक संगना। लोक संगना सबसे ज्यादा जो आदमी प्लेटफॉर्म पर खड़ा रहता है उसको इसका चांसेस ज्यादा है। ये एक प्लेटफॉर्म है, गद्दी पे बैठना एक प्लेटफॉर्म है, धार्मिक प्लेटफॉर्म पर लोक संगना से बचना बहुत कठिन बात है, बहुत कठिन बात है। समझदार लोग तो बैठते ही नहीं, ये इसकी समझदारी है। ठीक, कहीं समझदार लोग तो कितने ही बैठते ही नहीं, हमको नहीं बैठना है, क्यों? लोकसंज्ञा में आ जाएंगे हम तो। जिसकी कैपेसिटी है कि बैठे और लोकसंज्ञा में नहीं आए, उसका काम है वो बैठने का, बाकी दूसरे का काम है ही नहीं। लोकसंज्ञा वाले को कभी आत्मकल्याण नहीं होता, ये सिद्धांतिक सूत्र है कृपालु देव का, बहुत गहरा अनुभव से वो बात लिखी है। इसलिए खुद के विषय में इतने समर्थ पुरुष थे, बहुत बड़ी कैपेसिटी थी, महाज्ञानी थे ऐसा कह सकते हैं, फिर भी अपने विषय में लिखते हैं कि हम उपदेशक बन के किसी को उपदेश नहीं देते। कोई धर्म के जिज्ञासु जीव आते हैं तो उसको दिशा सूचन कर लेते हैं कि धर्म तो इस तरह से होता है, तो कोई पात्र जीव आता है उसको ये जो राज है इसका यानी सीक्रेट है वो बता देते हैं कि हमने ऐसे पाया, आपकी योग्यता है तो बात बता दी है, आप पुरुषार्थ करो हो जाएगा आपका काम, उपदेशक बन के ये करो वो करो ये ऐसा नहीं करना वैसा करना ये हमारा काम नहीं है, नहीं हाथ में नहीं लिया, प्लेटफॉर्म पर नहीं आए कभी समाज के। कुछ लोग इसके पीछे लगे थे तो धर्म की बातें करते थे लेकिन उपदेशक बन के नहीं करते थे, बहुत सभान दशा में बात करते थे। तो ऐसे ज्ञानी हैं वो बचते हैं, उनको लोक संज्ञा नहीं है, बाकी तो लोक संज्ञा में आते उनको पता ही नहीं चलता कि मैं लोक संज्ञा में आ गया, क्या करे बेचारा। और कल्याण से आत्मकल्याण से वंचित रह जाते हैं। इसलिए सभी मुमुक्षुओं को अपना आत्मकल्याण करने में समाज का विचार बीच में लाना नहीं है। जैसे अपना आत्मकल्याण हो जाए, सबसे बड़ी समस्या है जन्म मरण के नाश वही कर लेना है, ये रोग मिटाने में हमको समाज की बात बीच में लाना नहीं है। खास करके हिंदी भाषी प्रांत में से लोग आते थे, हमारे सोनगढ़ में कई लोग आते थे, बहुत लोग आते थे, वो लोग ऐसे बात करते थे कि समाज के बीच में हम रहना पड़ता है हमको, हमारी समाज ऐसी है, हमारी समाज ऐसी है, ये बात कोई सुनने को तैयार नहीं है, क्या करें। जैसे शुभ भाव से धर्म नहीं होता तो हमारी समाज में कोई सुनने को तैयार नहीं है, भक्ति पूजा ये तो होना ही चाहिए, ये तो सबसे पहले बात होना चाहिए, और हमारे यहाँ तो भगवान के दर्शन किए बिना कोई मुंह में पानी भी लगाते नहीं, मुंह पे पानी का गिलास भी नहीं लगाएंगे, और स्वभाव से धर्म होता नहीं, और ऐसे समाज के साथ रहना है तो समाज के साथ रहना है तो बहु भ्रमण करो, और समाज के साथ नहीं रहना है तो लोकाग्रह चले जाओ सिद्धालय में, वहां कोई समाज नहीं है, वहां सब सिद्ध परमात्माएं अपने अपने ध्यान में बैठे हैं, तो किसके बीच में रहना है, सिद्धों के बीच में रहना है या संसारियों के बीच में रहना है वो आपको निर्णय करना है। लेकिन समाज में हमारी इज्जत आबरू इसका क्या, ये नाकाड़े आते हैं, अरे तुम तीन लोक का नाथ है, समाज के इज्जत आबरू कुछ नहीं है इसके आगे। निज पद में उच्च पद क्यों मानते हैं? निज पद में उच्च पद क्यों? भीतर में तुम खुद परमात्मा हो। सबसे बड़ा पद तो तुम्हारा खुद परमात्मा का है। इस समाज की इज्जत वाला पद इतना बड़ा नहीं है। समाज की इज्जत में आपको सैकड़ों हजारों लोग जानते हैं कि बहुत अच्छे हैं, और इस लाइन में आप लायक हो गए, पात्र हो गए, तो अनंत सिद्ध परमात्मा के ज्ञान में आएगा कि ये जीव अल्पकाल में सिद्ध बनेगा। कितने सिद्ध है वो? अनंत सिद्ध परमात्मा के ज्ञान में आप आपकी स्थिति मालूम पड़ेगी। अब आपको किसकी नजर में आपकी इज्जत बढ़ानी है, कंपैरिजन कर लीजिए। सैकड़ों हजारों के संसारी लोगों के बीच में अपनी इज्जत रखनी है, या अनंत सिद्धों के ज्ञान में अपनी इज्जत रखनी है? किसके ज्ञान में रखनी है? विवेक करना चाहिए। इसलिए कृपालु देव ने तो लोक संज्ञा के परिणामों को कालकूट जहर बताया है। क्या बताया है? कालकूट जहर बताया है। इसलिए कालकूट जहर बताया है कि जिसको लोक संज्ञा होती है इसको परलक्ष मिटता नहीं, उसको कभी स्वलक्ष होता नहीं। और ये परलक्ष कितना भी धर्म साधन करो सबको चबा जाएगा, सबके सबको चबा जाएगा, कोई सफलता नहीं मिलेगी। इसलिए उसको कालकूट जहर बताया है। और चार प्रतिबंध जो लिखा है 172 पत्र में, समाज प्रतिबंध, कुटुंब प्रतिबंध, शरीर प्रतिबंध और संकल्प विकल्प प्रतिबंध, उसमें सबसे बड़ा समाज प्रतिबंध दिखाया है कि समाज को राजी रख करके आत्मकल्याण कोई करना चाहेगा उसको कल्याण करने में सबसे बड़ा प्रतिबंध है। ऐसे कुटुंब परिवार को सबको राजी करके मैं मेरा आत्मकल्याण करूं ये भी कभी होने वाला है ही नहीं, क्योंकि सबके विचार मिले, एक कुटुंब में जितने भी हो सबके विचार मिले ये संभव नहीं है। मिले तो ठीक है, नहीं मिले तो अपना आत्मकल्याण तो करना ही चाहिए। वहां बड़ी बड़ी तकलीफ वहां होती है, क्योंकि समाज के लोग के प्रति इतना स्नेह नहीं होता, जबकि परिवार के सदस्यों के प्रति स्नेह होता है, प्रेम होता है। अध्यात्म की भाषा में उसको राग कहते हैं। क्या कहते हैं? राग कहते हैं। और वो नाजुक परिस्थिति है कि जिसके साथ प्रेम हो स्नेह हो उसको नाराज कैसे करे? वो माने नहीं, अब करे क्या? ये परिस्थिति थोड़ी कठिनाई पैदा करने वाली तो अवश्य है ही, लेकिन जिसको आत्मकल्याण करना ही है वो सोचता है कि ये मेरे परिवार वाले जिसके प्रति मेरा स्नेह है वो तो इस भाव पर्यंत हैं। ऐसा स्नेह में अनंत कुटुंब के साथ करते करते इधर आया, अभी कुछ काल के बाद वो भी समाप्त हो जाएगा, वो बात भी समाप्त होने वाली है ही। स्नेह इसका मतलब ये नहीं कि अनंत काल साथ में रहेंगे और हमारा स्नेह भी रहेगा, ये बनने वाला है। जब बात कुछ काल तक की है, सीमित है, तो उसको इतना वेट नहीं देना चाहिए कि हम आत्मा हमारे आत्मकल्याण को छोड़ दें। ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ एडजस्टमेंट करके रास्ता निकलता है तो निकाल लेना चाहिए, नहीं निकले तो अपनी भावना आगे बढ़नी चाहिए, अपनी भावना में कमजोरी आना नहीं चाहिए, तभी आत्मकल्याण होता है, वरना कुटुंब प्रतिबंध से दुर्गति की प्राप्ति होती है। ये कुटुंब स्नेह का फल क्या है? दुर्गति है, सुगति नहीं है। 537 नंबर का कृपालु देव का पत्र है कि इस दूसरे जीव में पितापना पुत्रपना करके इस जीव ने अपना बुरा करने में कोई कसर नहीं रखी, माठू करवामा मना राखी नहीं, मनु एलिटरेशन के लिए इस बहुत नॉर्मल दिखता है, कुटुंब प्रेम में कोई एबनॉर्मल अपराध नहीं दिखता, नॉर्मल पोजीशन दिखता है, लेकिन दुर्गति का कारण वही है। तो अपने को दीर्घ दृष्टि से विचार करना है कि ये कुटुंब स्नेह के बहाने हम दुर्गति में जाएंगे तो हमारे कुटुंब वाले इस दुख से छुड़ाने के लिए कौन आएंगे? ये कोई आने वाले नहीं है, हमको अकेले को भोगना है, ये दुख हमको अकेले को भोगना पड़ेगा, इसलिए हमको सावधान होना है और इसकी कोई मर्यादा कर लेनी है, मर्यादा में चलना है, एक साथ उसको उड़ा नहीं सकते लेकिन मर्यादा तो अवश्य कर सकते हैं, और उस मर्यादा में हमारा जो रस है, तीव्र रस है, वो फीका हो जाएगा। ये सबसे मर्यादा का पहला कदम है कि ये रस फीका होने से हमारी प्रवृत्ति भी सीमित हो जाएगी, हमारे परिणाम भी सीमित हो जाएंगे और हम दुर्गति का रास्ता छोड़ करके मुक्ति के मार्ग जो पंचम गति है उसमें प्रयाण करने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसलिए ये विवेक करना है हमको कि हमें लोक संज्ञा में भी नहीं रहना है और कुटुंब प्रतिबंध में भी नहीं रहना है। फिर बात आएगी शरीर प्रतिबंध की, शरीर की साता साता को मुख्य करके हमको आत्मकल्याण को गौण करना नहीं चाहिए। लोक त्याग बिना वैराग्य यथा योग्य प्राप्त होना दुर्लभ है। क्या कहते हैं? लोक त्याग में असत्संग का त्याग है और कुसंग का त्याग है, जिसको आत्मकल्याण के वशात उदासीनता आती है उसको लोगों का परिचय अच्छा नहीं लगता, क्या है इसमें, क्या रखा है। कुछ लोग इकट्ठे होते हैं खान पीन और एंटरटेनमेंट के, कुछ प्रक्रिया चलती है, वो आर्टिफिशियल आनंद लेने के सिवा उसमें कुछ दम है ही नहीं, क्या है इसमें, क्या रखा है। सही आनंद तो वहां है ही नहीं, अब कृत्रिम आनंद कैसे जुटाना इसका प्रयास होता है। तो लोग एक दूसरे को ज्यादा मिलते हैं, कोई मित्र मंडल बनाते हैं, कोई क्लब बनाते हैं, कोई सोसाइटी बनाते हैं, कोई कैसे करते हैं, कोई वैसे मिलते जुलते रहते हैं, उसमें कुछ दम नहीं है। हमारा मनुष्य जीवन बहुत मूल्यवान है, ऐसे आर्टिफिशियल आनंद लेने में हमको हमारे समय गंवाना खोना ये विवेकपूर्ण बात नहीं है। इसलिए जिसको आत्मकल्याण करना है उसको लोक त्याग का भाव आता है। लोक में लोग दूसरे लोगों का संबंध बढ़ाने का प्रयास करते हैं, संसारी लोग, कि जितना भी अपना संबंध ज्यादा उतना अच्छा, अपना कॉन्टेक्स्ट सबसे ज्यादा होना चाहिए। ये मोक्ष मार्ग में चलने वाले काटते जाते हैं, जो भी संबंध है उसको समाप्त करते जाते हैं। हमको हमारा काम करना है, उसमें हमको समय गंवाना फुसाता नहीं है, इसलिए अपना समय बचाने के लिए और हमारे परिणाम में दुर्गुण नहीं आए इसके बचने के लिए, सद्गुण की प्राप्ति के लिए हो सके उतना कॉन्टेक्ट को कम करना होता है। बोलिए।
आत्मा में कॉन्टेक्ट एस्टैब्लिश हो जाता
है। हाँ, तभी होता है। दो बाजू का कॉन्टेक्ट एक साथ नहीं रहता। स्वरूप में ध्यान लगाना है तो बाहर के संबंध है उसको, अटैचमेंट को डिटैचमेंट करना चाहिए, तभी तो होगा काम, इसके बिना नहीं होगा। इसलिए ये भी एक परिस्थिति पैदा होती है, क्या है झूठा है यानी बराबर नहीं है क्या, ऐसा प्रश्न उठाया है कि परिभ्रमण किया तो किया, अब इसके लिए प्रत्याख्यान लेवे तो क्या, मैंने निर्णय करना चाहिए कि अभी मुझे परिभ्रमण करना नहीं है, ऐसा निर्धार, दृढ़ निर्धार करना चाहिए। तो ले सकते हैं, कहाँ ले सकते हैं, अगर हम चाहें तो ले सकते हैं, ये कोई ऐसी कठिन बात नहीं है कि हम परिभ्रमण छोड़ने के लिए तैयार नहीं हो सके, ऐसी कोई बात है ही नहीं। जब भी चाहे, आज चाहे, अभी चाहे तो ये ले कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि बाहर का तो कोई फेरफार करना नहीं है, ग्रहण त्याग का कोई विषय नहीं है, अपने परिणामों में, भावों में एक निश्चय करना है, निर्धार करना है कि हमको डिसीजन लेना है कि हमको ये करना है, दूसरा कुछ नहीं करना है। अगर ये ले सकते हैं तो यह भी आश्चर्यकारक है। क्या लिखा, दूसरे लोग तो नहीं कर सकते परिभ्रमण नहीं करना है ऐसा निश्चय, लेकिन जो इस विचारधारा में आते हैं उसमें भी सब नहीं कर सकते, उसमें भी बहुत अल्प मात्रा में कुछ एक जीव ऐसे निर्धार में आते हैं, इसलिए ये निश्चय करने वाला भी कोई होता है तो एक आश्चर्य की घटना समझता है, वो भी एक आश्चर्यकारक है ऐसा दिखा है। क्यों कि जीव परिभ्रमण की चिंतना में आत्मा की चिंतना करता है, और वो आत्मा की चिंतना जब होती है के पर पदार्थ की चिंतना, शरीर की चिंतना, कुटुंब की चिंतना, भविष्य की चिंतना, वर्तमान की चिंतना को जब छूटती है तब इस चिंता को छोड़े बिना, अनात्मा की चिंता को छोड़े बिना आत्मा की चिंता होती नहीं। आत्मा की चिंतना जिसको करना है परिभ्रमण के विषय में, क्यों नहीं होती कि अनात्मा की चिंतना में उतना रुक गया है कि वो चिंतना पैदा ही नहीं होती। अगर कोई नहीं रुका और इस चिंतना में आया तो एक आश्चर्यकारक घटना है, ऐसा लेना है। इसलिए लिखा ये भी आश्चर्यकारक है। अत्यारे अब तो उतना ही कहेंगे, इससे ज्यादा नहीं कहेंगे, आश्चर्यकारक है ऐसा कह करके बात को समाप्त कर दिया है कि अब तो उतनी बात है, फिर कभी योग होने से मिलेंगे, जब मिलेंगे तब मिलेंगे, अब तो इस बात को यहीं समाप्त करते हैं। यही हमारा विज्ञापन है, लिखने वाले रायचंद का यथा योग्य है। ऐसे करके पत्र को समाप्त किया है। तो इस तरह से सारे पत्र का जो सारांश है वो है कि सबसे बड़ी समस्या जो परिभ्रमण की है उसको अग्रताक्रम यानी मुख्य करके इसी कार्य में हमको लगना चाहिए। ये एक परम विवेक है, वरना अविवेक से तो उसका फल भोगना अनिवार्य हो जाएगा।
Thank you.